તારીખ 4/3/1996 શ્રી રત્નાકરણ શ્રાવકાચાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 6
पंडित सुभाष सुभाष जी ने समूह दृष्टि की विचारधारा कैसी होती है और समूह ज्ञान से चिंतन कैसा होता है वो विषय लिया है वो चल रहा है। उनको पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं होती, पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं होने से जितनी भी अनुभूत अवस्था है उस अवस्था का उनको निषेध होता है। उसका थोड़ा विस्तार ना करते हैं पूरे दिशा संवेद लेने से ऐसा चिंतन होता है कि मैं घोड़ा नहीं, मैं श्याम नहीं, शरीर के धर्म की बात है, मैं राजा नहीं, मैं भूत नहीं, मैं बीच वाली पूरी अवस्था वाला देने में उस बात है। मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं, ये शरीर बल है, कमजोरी है, उन्हीं में नहीं है। जाता है तुम्हें बीमार भी नहीं और वो तुम्हें भी नहीं, शरीर की अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है। मैं स्वामी हूं, मैं सेवक नहीं, स्वामी मेरे में सेठ भी नहीं और मैं नौकर या अनुचर भी नहीं हूं। मैं भगवान जाते तो उसमें कुछ जाते का विचारधारा नहीं है। समय दृष्टि के ऐसा भिन्न विचार होता है। अब समय जी ने मिथ्या दृष्टि की विचारधारा के विषय में भी लिखा है और मिथ्या दृष्टि परत पर्याय में अपना पुन माने हैं। बुधन ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि परत पर्याय में आपा माने हैं, आपा मैंने अपना पुन मानता है। मिथ्या दृष्टि का अपना जाति में कुल में देह में धन में राग में ऐश्वर्य में सत्ता में तो सत्ता में भी बात बहुत तकलीफ देती है। तो छोटी सी संस्था होती है, छोटा सा ग्रुप होता है, मेरी सत्ता चलती है, यहाँ मेरा मैंने में चलता है, इतना जो अहम भाव में आ जाता है मिथ्या दृष्टि अपने को जाति में कुल में देह में राज में ऐश्वर्य में महल मकान में और नगर कुटुंब में अपनापन करता है। ये सब जगह कहीं न कहीं अपनापन करता है, इसको दर्शा उद्योग है अपना फल कर लेता है। यहां तो जो हमारी पति हमारी बहन हमारा सर्वस्व पूरा हुआ, हमारा विचार हुआ, हमारा विचार हुआ, मैं मरा मैं किया मनुष्य को समय लिया है। आयुष्य तो आत्मा का नहीं, आत्मा के तो आयुष्य होते हैं, आत्मा स्वरूप से तो अनादि अनंत है, उसको कोई देखे आयुष्य तो होते नहीं। इसलिए मैं अधिक जिंदा रहूं तो ठीक, मैं मरूं नहीं तो ठीक, ये मिथ्या तो अवस्था में होता है, यानी को कुछ लगता नहीं है। वो तो कहीं भी हो, जैसा कि पत्र में आया है सुगंध जी के पत्र में आया है, कहीं भी कहना हो मुझे तो मेरे ज्ञान में या तो व्यापक होकर के रहना है। वो तो गुरु सब उजरा के मिले हमारे तो हमारा ज्ञान ना व्यापक में रहो कहीं जो मेरे स्वरूप में मैं व्यापक हो करके रहता हूँ और कई जगह मैं रहता नहीं हूँ, इससे मेरे आयुष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे दुनिया में बड़ा हमारा पुरस्कार हुआ, हमारा अपमान हुआ, हमारा सम्मान हुआ, जय माल्यार्पण करते थे, माल्यार्पण कराया करना नहीं करना तो नहीं करना हमारा सम्मान हुआ, सबों के बीच में हमारा सम्मान हुआ, सम्मान हुआ या आत्मा की मृत्यु हुई क्या हुआ, ये सम्मान मीठा लगता है या इसमें अपने मौत भाषित होती है क्या होता है, तो मीठा तो नहीं जीव जीव के जीव को मारता है, सही मौत है। परिवर्तन कैसे होगा, अपने को इसका ज्ञान करना है कि गुरुदेव का परिवर्तन कैसा होगा। उसी के अनुसार उन्हें बोलता है, उससे विरुद्ध बात करता है। कृतज्ञ भया जीव सूत्र की निंदा करे हैं, और जो जीव सूत्र है शास्त्र जी के सूत्र है उनकी निंदा भी कर लेता है, कभी कभी ऐसा भी महापाप करता है। बहु ज्ञानी की निंदा करता है, विशेष ज्ञानी होते हैं इनकी भी निंदा कर लेता है किसी न किसी बहाने। दुष्ट अभिप्राय दुष्ट अभिप्राय होकर के पांच आदमी में वो मान्यता पक्षपात ग्रहण करके निज आधार रहित हुआ, हठात नहीं आप थापी मैंने अपनी बात को स्थापने वाला एकांती श्यालवाद रूप भगवान की वाणी से परामुख हुआ, क्लेश कलह विसंवाद करके निंदा इनको धर्म मान करके तिष्ठता है, तो ऐसा भी कभी परिणाम मिथ्या व्यवस्था में जीव करता है, तो वो पक्षपात करता है, मैंने अपनी बात को पूर्वग्रह में रख करके स्थापता है, और भगवान की जो वाणी है श्यादवाद में जो अपेक्षाएं हैं उसको मानता नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वाद विवाद में वो आ जाता है। शास्त्र पढ़ करके वाद विवाद में कौन आते हैं कि जिसको अपना क्षोभ शंका अहम होता है, मैंने भी इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतने साल से मैं शास्त्र का अभ्यास करता हूं, मैं भी बहुत जानता हूं, क्या क्या शास्त्र में क्या क्या लिखा है वो सब अपेक्षाएं निरीक्षाएं मैं सब जानता हूं, तो उसका अहम भाव में आकर के अपने को सच्चा ठहराने का, दूसरे को झूठा ठहराने का अभिप्राय में वाद विवाद में आ जाता है। तथा कितने मिथ्या दृष्टि, अनेक प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है वो पंडित जी ने लिया है, तथा कितने मिथ्या दृष्टि किंचित मात्र बाह्य त्याग ग्रहण करके तथा स्नान करके भोजन करके तथा अन्य देवादि की वंदना का त्याग करके आपको कृत्य कृत्य मानता है। कितने ऐसे हैं कि किंचित मात्र बाह्य त्याग करता है, ग्रहण त्याग में क्रियाकांड में किंचित करता है, भोजन करता है तो स्नान करके करता है, तो भोजन करना पुण्य है या पाप है, है? ये तो पाप भाव है। अन्य पदार्थ को ग्रहण करने का परिणाम ही पाप भाव है, पूरी दशा को छोड़ करके भाग लेंगे, तो फिर भी स्नान किया फिर बाद में हमने भोजन किया, बिना स्नान के भोजन नहीं किया, इसका भी अहम भाव हो जाता है। तथा अन्य देवादी की मंदिरा का त्याग करता है, मैं कुदेव को नहीं मानता, मैं शिव तीर्थंकर आदि सूर्य को ही वितराग देव को मानता हूं, कुदेव को नहीं मानता, ऐसे ऐसे परिणाम करके अपने को कृत्य मानता है, और दूसरे जगत के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानता है, दूसरे से मैं अच्छा हूं ऐसा भाव उनका रहता है, और अन्याय से आजीविका और हिंसा के आरंभ में निपुण हो अन्य धर्मी के शीघ्र हेरते फिरे हैं, दूसरे के दोष देखते हैं और खुद क्या करता है उनका तो ख्याल रहता नहीं, वो तो खुद तो अन्याय भी कर लेता है हिंसा भी कर लेता है लेकिन दूसरे के दोष देखते हैं, तथा निर्दोष पुरुष के दोष विख्यात करी मद में छके फिरते हैं, जो निर्दोष हैं इनके भी दोष बाहर भी खुला करता है, और आपको ऊंचा मानते अन्य को अज्ञानी और भ्रष्ट मानते हैं। पापी को आप अपने प्रशंसा कराए फूलों फेरते हैं, दूसरे हल्के पापी से भी अपनी प्रशंसा करा लेते हैं और अपना स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखता है और अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। भोले जीव को मिथ्या उपदेश देकर के एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं, जो समझते नहीं है उनको जैसा भी एकांतिक उपदेश दे करके वो हट में ले जाते हैं। और कुगुरु कुदेव को नमस्कार के त्याग करने से और अन्य देव की निंदा करके और सभा में बैठ मिथ्या वेशधारी की निंदा करके आपको समय दृष्टि मानता है, उस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रवृत्ति करते हैं कोई तथा लोग हमको दृढ़ श्रद्धालु धर्मात्मा मानेंगे ऐसा अनंतर्म मान के उद्देश्य पर की निंदा करके ही अपने को ऊंच जानता जगत को अधर्मी मानते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति होती रहती है। उस पर से पंडित जी साहब ने हितोपदेश करके सारांश लिखा है, बात सुनने ज्ञानी की भी लिखा मिथ्या दृष्टि की भी लिखा, अब इस पर से उपदेश क्या लेना है। जिससे कुदेव को नमस्कार तो समस्त तेज भी नहीं करते हैं और नारक भी नहीं करते हैं। देखो क्या बात ले लिया, तेज और नारक भी कुदेव को तो नमस्कार नहीं करते हैं तो मनुष्य होकर के कैसे करता है, इतना भी विवेक नहीं है। मैंने तेज और नारक से भी गया जीता हुआ क्या? हाँ? देखो कहां ले गए पंडित जी कि कुदेव को नमस्कार तो तेरे जो नारके भी तो नहीं करते तो मनुष्य होकर के क्या करता है। भोग भूमि के तो मनुष्य भी नमस्कार नहीं करते हैं और समस्त देवताएं नहीं पूजते हैं। नमस्कार पूजा नहीं करने से ही समीप दृष्टि हो तो समस्त नारकी मनुष्य तिरें से अधिक समीप दृष्टि हो जाए तो है नहीं वो तो भी नहीं करते हैं तो क्या वो समीप दृष्टि हो गए क्या। पूरे जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देवा देखने की निंदा करते हैं, करने से ही समय तो नहीं होगा और दूसरे की निंदा करने से कोई समय तो की प्राप्ति नहीं होती है। इनका दोष वैसा है, इनका दोष वैसा है, ऐसा करने से तो कोई समय दृष्टि नहीं होता। जगत की निंदा करने वाला और पाप में तो वैर करने वाला, पापियों से वैर करने वाला तो कुंभते की का ही पात्र होगा, दूसरे की निंदा करने से तो कुंभते का ही पात्र होगा। जगत की निंदा करने वाला जाते यहां जिससे मिथ्या भाव तो जीव के अनादि का है, सम्यक दृष्टि तो इसकी करुणा करे, सम्यक दृष्टि होता है वो निंदा नहीं करते हैं, कुछ बात करते हैं तो भी करुणा से करते हैं कि परिभ्रम बढ़ाने वाले परिणाम को छोड़ने के लिए आशय से वो करुणा करते हैं। और समस्त में साम्य भाव ये करते हैं और सभी जीव में वो साम्य भाव करते हैं। सभी एक जाति के जीव हैं, एक गर्भ के जीव हैं, जो भी फर्क है वो अवस्था में फर्क है, किसी के दोष की अनुमोदना नहीं करते, दोष का निषेध करते हैं लेकिन आत्मा का निषेध तो नहीं करते। सभी की आत्मा तो भगवान आत्मा ही होती है, उसका तो निषेध नहीं होना चाहिए। इसलिए समस्त में साम्य भाव करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन तो अपना और पर का सत्य श्रद्धा ज्ञान विनय सहेज श्यादवा रूप परमा गम के शरीर से होगा। इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन है वो तो अपने को अपने रूप मानना, पर को पर रूप मानना जानना, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके श्यादवाद रूप परमागम के सेवन से ही यानी यथार्थ ज्ञान से ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना होगी। इस प्रकार से यहाँ स्वामी समुद्रा आचार्य विरचित रत्नकरण श्रावचा का श्रावचा श्रावक आचार्य के पंडित सदासुखदास जी कृत देश भाषामय वचनिका का प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार समाप्त होता है। ये आखिर की गाथा थी सम्यक दर्शन के अधिकार के। अब जो है दूसरा अधिकार है इसके पीछे वो सम्यक ज्ञान का अधिकार है। द्वितीय जो अधिकार है वो सम्यक ज्ञान का अधिकार है। उसमें प्रथम ही सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने का सूत्र कहते हैं। सम्यक ज्ञान है वो आत्मा का धर्म है, उसको प्रकट करने के लिए सूत्र कहते हैं। अन्योन्योतिरिक्तम् यथातथ्यं विनाश विपरीतात् ये संदेह वेद यदा हौस्तद ज्ञानम् आगमिनः। अर्थ कहते हैं कि आगम के जानने वाले श्री गंधर्वदेव तथा सुतकेली हैं, वे उस ज्ञान को कहते हैं, वो उस ज्ञान को कहते हैं जो आगम के जानने वाले हैं, आगम चक्षु आगम में निपुण है वो उसको कहते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। जो वस्तु के स्वरूप को परिपूर्ण जानते हैं, न्यू नहीं जानते हैं और वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको तैसा जानते हैं, निराधिक नहीं जानते हैं और जैसा वस्तु का सत्यार्थ स्वरूप है तैसा ही जानते हैं और विपरीत पने से रहित जानते हैं और संशय रहित जानते हैं, इसको भगवान ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं कि जो संदेह रहित विपरीत रहित विपरीतता रहित और भ्रम रहित, अनुदेवसान मैंने भ्रम रहित जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानते हैं, निराधिक नहीं जानते हैं, उसको भगवान ने ज्ञान बोला है, सम्यक ज्ञान उसको बोला है। यहां सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा है, इस गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा है। वस्तु का स्वरूप को न्यून जानते हैं तो मिथ्या ज्ञान है, जैसा वस्तु का स्वरूप है इससे कम जानते हैं वो मिथ्या ज्ञान है और जैसा आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप है,
आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप है और आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जाने कि मैं तो मति सूत वाला हूं उस प्रकार से जाने सो न्यून रूप जानते हैं वो मिथ्या ज्ञान गया, वो मिथ्या ज्ञान हुआ। जैसा है वैसा आत्मा को जाने वो आत्मा का सच्चा ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। जो मति सूत ज्ञान का सूक्ष्म है वो तो कर्मजनित अवस्था है, वो कोई आत्मा का स्वभाव वैसा नहीं है। और वस्तु के स्वरूप को अधीन जाने सो ही मिथ्या ज्ञान है। जैसे न्यून जाने वो भी मिथ्या ज्ञान है, वैसे अधिक जाने वो भी मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव को ज्ञान दर्शन सुख सत्ता और मूर्तिक ऐसा है, तिनको ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्त भी जानना और पुद्गल के गुण रूप स्पर्श गंध वर्ण रस मूर्तिक भी जानना तो अधिक जानते हैं, वो मीठा ज्ञान है। वो अधिक कैसे जानता है कि मैं शरीर वाला हूं तो जो भी शरीर का संयोग हुआ मान लिया अपना स्वरूप ऐसा, मैं ऐसा शरीर वाला हूं, छोटा हूं मोटा हूं दुबला हूं पतला हूं स्वरूप हूं स्वरूप हूं, वजन घटा तो मेरा कम हो गया, बढ़ा तो मेरा बढ़ गया, भूख मुझे लगी, तो ऐसा जो मानता है वो आत्मा को अपने स्वरूप से अधिक जानता है। मैं आत्मा रूप भी हूं और अनात्मा रूप भी हूं, जड़ रूप भी हूं। जड़ के पर्याय को अपने रूप स्वीकार कर लेता है श्रद्धा ज्ञान में। और एक दृष्टांत देते हैं, इस शिव को सफेद और चलकता देखते रूपा का ज्ञान होना चांदी का ज्ञान होना सो विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। शिव में चांदी का ज्ञान होना वो विपरीत ज्ञान है, सफेद है चलकता है, इसलिए चांदी जैसा देख करके शिव को चांदी मानना वो विपरीत ज्ञान है। और ये शीप है या चांदी है ऐसे दो में कोई निश्चय नहीं कर सके, टुकड़ा है शीप का चांदी होगी या शीप होगा मालूम नहीं पड़ता, क्या होगा कैसा होगा ऐसा संशय रूप किसी एक का निश्चय रहित जानना तो संशय ज्ञान है, उसको भी मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। तो अपने रूप में कैसे जानता है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं, हमको क्या मालूम, हमको तो प्रतीति नहीं होती या निश्चित निश्चय नहीं होता कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं, कोई निश्चय नहीं बनता, संशय बना रहता है, शंका बना रहती है, वो भी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। संशय भी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है, विपरीत पना भी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। और जो वस्तु का जैसा स्वरूप है तैसा जानना सो सम्यक ज्ञान है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना तो और वैसा ही अनुभव करना, जानना और अनुभव भी वैसा ही करना। अनुभव की बात इसलिए जरूरी है कि हम लोग शास्त्र का जो स्वाध्याय करने वाले हैं वो जानकारी को सही कर लेते हैं, सही नहीं करते हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो सही जानकारी करते हैं तो जो भूल वाली जानकारी थी वो जानकारी मिट करके जानकारी सही हुई। लेकिन अनुभव ऐसा नहीं करते हैं तो वो जानकारी कुछ काम की नहीं हुई। मेरे दुख मिट करके सुख नहीं होगा। जैसे असाता वेदनी का उदय हुआ, शरीर में बीमारी आई, किसमें आई? शरीर में बीमारी आई, आत्मा में तो बीमारी नहीं आई। फिर भी मैं बीमार हो गया ऐसा अनुभव करना, वो मिथ्या ज्ञान है। ये अनुभव की भूल है। तो उस वक्त जानकारी तो बराबर कर ली है कि शरीर है वो आत्मा नहीं, आत्मा है वो शरीर नहीं, शरीर की क्रिया शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। फिर भी बीमारी की अवस्था में, असाता वेदनी में अपना अनुभव किया, तो जानकारी विरुद्ध अनुभव किया कि नहीं किया? उस वक्त अनुभव और जानकारी परस्पर विरुद्ध है, वो बात समझ में रहती है क्या? और वो विरुद्ध है तो वो विरुद्धता कैसे मिटे, इसका कोई प्रयास होता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो जानकारी की का जानकारी बेकार हो गई, जानकारी का कोई सार्थक पना नहीं रहा, यानी जानकारी का प्रयोजन नहीं रहा। इसलिए ऐसे परलक्षी शास्त्र ज्ञान की जानकारी भी निष्फल होती है, स्वलक्षी होती है। तो अनुभव और जानकारी में जो अंतर होता है, वो अंतर तोड़ने का प्रयास मुमुक्षु जीव करने लगता है, और वो प्रयास जो करता है वो आखिर में सफल होकर के ज्ञान दशा को प्राप्त करता है। तो जैसा उसका जानना है वैसा ही उसका अनुभव होगा। इसलिए सिर्फ जानना वो बात नहीं है। इसलिए वस्तु का जैसा स्वरूप है तैसा जानना, जानने में जानना भी और अनुभव करना भी, दोनों बात ले लेना। ज्ञानी तो अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, परलक्षी जानकारी वाला ज्ञान को वो ज्ञान नहीं कहते हैं। एक नया प्रकार का अज्ञान कहने में आता है, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। दृष्टांत देते हैं कि जैसे 16 को 5 गुणा करने से 80 होता है, ताको 78 जाने तो न्यून ज्ञान हुआ, और 80 का 82 जाने तो अधिक हो गया, और 80 जाने 16 जानना व 5 जानना तो विपरीत ज्ञान हो गया। 16 को 80 जाने तो बराबर है, 80 को 80 जाने तो बराबर है, लेकिन 16 और 5 जाने तो 16 और 5 का गुणाकार 80 है, उसको न 16 जानना न 5 भी जानना चाहिए, वो विपरीत हो गया। और 16 को 5 गुणा करने से 80 हुआ कि 78 हुआ, ऐसा संदेह रूप जानना वो संशय ज्ञान है। कि क्या मालूम 16 से 5 गुणा करने से 78 होगा या 80 होगा, कि किसको मालूम, हम क्या जाने, वो बात संशय वाला हो गया। ऐसे न्यून जानना तथा अधिक जानना तथा विपरीत तथा संशय रूप जानना, ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या ज्ञान होता है। और जो वस्तु का स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने, फिर उनको सम्यक ज्ञान कहने में आता है। वो तो दृष्टांत है, यहाँ आत्मा के स्वरूप की बात है, स्वपर के स्वरूप की जो बात है। यहाँ ये प्रथम गाथा समाप्त होती है, आगे का विषय आप देखा ध्यान में लेंगे।